मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के रूप में मैं आप सबसे आरक्षण के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दो दूसरी बातों को देख लेते हैं। और मैं माफी चाहूंगा कि इसमें पहली बात, इनफैक्ट सच पूछिए तो जो स्टूडेंट लगातार मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके उत्तर के रूप में है। मेरे पास ढेर सारे मेल आ रहे हैं और उनकी जिज्ञासा इस बात को लेकर के है कि सर, AFAIS ऑफलाइन कोर्स भी कराती है, 15 दिन की हम लोगों की क्लासेस होती हैं जिसका डेट अभी डिक्लेयर की गई है। आप जानते हैं कि अक्टूबर में है, अक्टूबर के लास्ट के जो दो सप्ताह हैं उनमें 15 दिन की क्लासेस होती हैं, और दूसरा ऑनलाइन कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर ही रखा है। तो उनका प्रश्न यह होता है कि इन दोनों में से हमें कौन सा करना चाहिए, और यह भी प्रश्न होता है कि क्या इन दोनों को भी कर लेना चाहिए। तो देखिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहली बात तो यह है कि यह आपकी पूरी तरह से दो बातों पर निर्भर करता है। पहली आपकी आवश्यकता और दूसरी आपकी स्थिति। जब मैं स्थिति की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए आना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का समय देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और स्थिति का जो दूसरा पक्ष होता है वो आर्थिक पक्ष होता है, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जहां तक लाभ की बात है वह मैं क्लियर कर सकता हूं और वही करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों में से ही एक चूज करना चाहते हैं, एक ही को चूज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में पूरा जो आपका सिलेबस है, ऑप्शनल को छोड़ करके प्री, मेंस और इंटरव्यू तक को कवर किया गया है। इसमें आप एक एक टॉपिक के लेक्चर्स सुनेंगे, और लेक्चर्स ऐसा नहीं कि सीधे सीधे सुनाए गए हैं, समझाए गए हैं। सही शब्द होगा कि आप एक एक टॉपिक को समझेंगे, चाहे वो जनरल हिंदी हो, जनरल इंग्लिश हो, हर तरह के जो पेपर्स आपके होते हैं उनका सिलेबस आपको पता लगेगा। जनरल स्टडीज के पेपर्स है 1, 2, 3, 4, इनका सिलेबस क्या है, सिलेबस सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई होती हैं, लेक्चर्स से वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर आप जैसे कि अभी प्री एग्जामिनेशन आ रहा है तो उसके आपको लगभग 1000 क्वेश्चंस यूं ही प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो इस तरह से आप यूं कह लीजिए कि अगर हम ऑप्शनल को छोड़ दें तो स्टूडेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उन सबको बहुत गहराई और संवेदना के साथ सोचने के बाद हम लोगों ने ये चाक आउट किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन कोर्स प्रीफर करना चाहिए। अब ऑफलाइन की जो बात है, देखिए ऑफलाइन कोर्स में जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं, हम केवल यह बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं उनके बेसिक्स बताए जाते हैं, उन्हें पढ़ने का तरीका बताया जाता है। फिर 15 दिन का आपका जो माहौल होता है, ग्रुप में आप होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चलती रहती है, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आमने सामने उसे सॉल्व किया जाता है, तो उसकी एक अलग उपयोगिता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, या अगर आपने ऑफलाइन कर लिया तो ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। मदद करेगी अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं पहले या बाद में, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ऑफलाइन भी उसमें मदद करती है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य के रूप में अगर आप कहें कि अगर आप कोर्स करना ही चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर वह ऑनलाइन को मैं कह सकता हूं कि अनिवार्य जैसा है। तो दोस्तों, बहुत दिन से लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा था तो मुझे लगा कि आज के अवसर का लाभ उठाकर और आप सबसे एक मौन अनुमति लेकर के यह बात मैं क्लियर कर दूं। अब मैं आता हूं एक छोटी सी घटना पर या न्यूज पर जो आप लोगों ने रेडियो न्यूज में सुनी होगी। हालांकि अखबारों में इस तरह की घटनाओं को महत्व नहीं दिया जाता, समाचारों को महत्व नहीं दिया जाता, घटना तो नहीं है। न्यूज में आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, मैत्री सेतु। अब देखिए, शब्द है मैत्री सेतु, यानी कि एक ऐसा सेतु जो मित्रता स्थापित करता है। तो जैसे एक जो भी ब्रिज होता है वो एक तट को दूसरे तट से जोड़ता है, तो ये जोड़ने वाला एक है, तो उसे उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया मैत्री सेतु। देखिए, जब हम मैत्री सेतु कहते हैं तो अगर आप जरा सा भी सोचेंगे तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ये कोई एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने की बात नहीं होगी। अगर मैत्री जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो डेफिनेटली इसका संबंध सामान्य तौर पर हमारे निकट के पड़ोसी देश से होगा, पड़ोसी देश के साथ हम अपनी मित्रता का प्रमाण दे रहे हैं या मित्रता के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं या पहले से ही मित्रता है तो उसे और घनिष्ठ बना रहे हैं, तो मैत्री सेतु यानी कि ये जो सेतु है भारत के साथ साथ किसी दूसरे देश के लिए होगा, दूसरे देश को जोड़ेगा। एक कॉमन सेंस, अगर आप प्री एग्जामिनेशन में मान लीजिए कि इस क्वेश्चन से टकरा जाते हैं और आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो कैसे आप उसका उत्तर ढूंढेंगे? तो उस बात को ध्यान में रख करके मैं यहां थोड़े से अलग तरीके से इसके लिए बात कर रहा हूं। तो पड़ोसी देश के साथ ही आप पुल से जुड़ सकते हैं। अब श्रीलंका है तो श्रीलंका के साथ कितना लंबा पुल बनाएंगे, मालदीव के साथ कितना लंबा पुल तैयार करेंगे, तो किन किन के साथ तैयार किया जा सकता है जो हमारे बिल्कुल निकट के हों? तो आप निकट के सोचिए कि ठीक है एक भूटान हो सकता है, ठीक है एक म्यांमार भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, फिर एक तरफ आप देखेंगे तो बांग्लादेश भी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, इस तरह से कुछ आप नाम दिमाग में ले आइए। अब इन सब को दिमाग में लाने के बाद डेफिनेटली अब आपको तथ्य की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये किससे संबंधित है, क्योंकि इनमें से किसी से भी संबंधित हो सकता है। तो अब आपको जो विकल्प दिए जाएंगे उन विकल्पों में का कमाल कुछ इस तरीके से होता है कि वहां आपको बांग्लादेश अलग से मिल जाएगा, या कुछ इस तरीके से विकल्प दिए जाएंगे कि अगर आप थोड़े से भी सतर्क हैं, या गलती से आपने कभी न्यूज में सुन लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, गलती से ही मैं कह रहा हूं क्योंकि सही में तो अगर आप सुनते, अगर आपको लगता कि नहीं ये महत्वपूर्ण है तब तो आपके दिमाग में तथ्य होते, लेकिन गलती से सुन तो लिया है लेकिन ध्यान नहीं है तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि नहीं यार इसका जो संबंध है ना वो बांग्लादेश से है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि ये जो मैत्री सेतु है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है और जो बना है जिस नदी पर उसका नाम है फेनी। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, ये फेनी नदी पर बना है और ये जो फेनी नदी है ये त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ती है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि हमारा जो स्टेट है त्रिपुरा वहां फेनी नदी बहती है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अभी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आरक्षण पर, और ये विषय मैंने क्यों चुना है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों अब राज्यों से कहा है कि आप सब बताइए कि जो 50% वाला जो आरक्षण है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इस पर मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, अब हम थोड़े से दूसरे एंगल से इस पर बात करेंगे कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये बेसिकली किस तरीके का मुद्दा है और इस पर कौन कौन से कोण से विचार किए जाने चाहिए, किस किस एंगल से हम इसे देखें। आज के दैनिक भास्कर में इसको लेकर के एक एडिटोरियल लिखा गया है और दैनिक भास्कर ने यह प्रश्न उठाया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्यों से क्यों पूछ रहा है, राज्यों से उसे क्या मिलना है। और सच पूछे तो तार्किक रूप से उसने बहुत सही क्वेश्चन उठाया है क्योंकि राज्य तो ऑलरेडी कोई 60% दे रहा है, कोई 70% दे रहा है और राज्य ये जानते हुए ये आरक्षण की घोषणा कर रहे हैं कि संवैधानिक रूप से हम 50% से ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होगा, लेकिन राज्य करते चले जा रहे हैं। तो अगर राज्य से पूछा जाएगा तो वो अपनी ही बात करेंगे और फिर राज्य जो है वो राजनीति से प्रेरित बात कहेंगे, वो संविधान से प्रेरित बात नहीं कहेंगे, यहां तक कि वो सामाजिकता से भी प्रेरित बात नहीं कहेंगे। उनको तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि कैसे उन्हें वोट मिल सकते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, आपको मैं वो एडिटोरियल प्रोवाइड भी कर रहा हूं, आप देखिएगा कि कौन राज्य या कोई भी राजनीतिक दल यह खतरा उठाएगी कि वो कहे कि नहीं नहीं ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए उनसे पूछने का कोई मतलब नहीं। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आधार पर इसके बारे में निर्णय ले, ये इसका एक एंगल है। दोस्तों इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है कि देखिए जो ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तैयार किया गया है ना, कि जिनकी आय इससे अधिक है वे हालांकि जाति के रूप में तो वो ओबीसी में आते हैं लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। एक जगह हम इसको देख रहे हैं, वो बकायदे काम भी कर रहा है वो। तो अब जबकि हम स्वतंत्रता के 75th ईयर में पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं इसको ही हम दूसरे आरक्षण के प्रावधानों पर लागू करें? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, क्या इसमें ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक लाभ तो जरूर होगा कि जो आरक्षण है उसका जो पर्पस है, मूल पर्पस बहुत सही है और दुनिया के देशों में ऐसा होता है कि भी जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है उन्हें समानता के स्तर पर लाया जाए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और भारत की विडंबना ये रही है कि ये जो असमानता है वो जाति पर आधारित रही है, इसीलिए आरक्षण भी हमारे यहाँ जाति के आधार पर दिया गया है। तो क्या एक ये भी प्रश्न बनता है कि अगर क्रीमी लेयर के सिस्टम को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे वर्गों में जहां जहां भी है इस तरह से अगर लागू कर दिया जाए तो क्या वह उपयुक्त होगा? दोस्तों, इसका एक जो और पक्ष है वो ये है कि जैसे अब आरक्षण जो है सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट क्षेत्र में नहीं है। जब भी सरकार प्राइवेट क्षेत्र में इसे लागू करने की बात करती है तो देखिए विरोध होने लगता है। तो जो सरकारी क्षेत्र में जब इसे आरक्षण दिया जा रहा है तो क्यों नहीं एक आयोग बैठाया जाए और इस पर पूरी गंभीरता के साथ विचार किया जाए, सामाजिक दृष्टि से भी कि इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रशासनिक दृष्टि से भी, और समाज में कितनी समानता आई है, नहीं आई है तो क्यों नहीं आ पाई है, इस तरह से अगर इसका पूरा विश्लेषण करके और फिर से इसके बारे में नए रूप में इसे लागू किया जाए तो वह भी एक एंगल हो सकता है। मैं आपको विचार करने के लिए कुछ एंगल्स बता रहा हूं, कुछ कोण बता रहा हूं कि इन इन दृष्टि से भी इस पर विचार किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारे जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारी सामाजिक बुनावट है, उसको धक्का पहुंचा रहा हो, हमारा जो सामाजिक आर्थिक जो विकास होना चाहिए उसको कमजोर कर रहा हो, या हो सकता है कि उसे और मजबूत कर रहा हो, वी डोंट नो। तो जो आयोग होगा वो इन पर सही मायने में बात रखेगा और उसके आधार पर फिर आगे शायद निर्णय लिया जा सके। लेकिन यह विषय एक बर्निंग विषय हो चुका है और लगातार आपको इस टॉपिक पर अपनी निगाह टिकाए रखनी है। जब भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले आपको चाहिए कि आप उन्हें नोट कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि आप जिस उम्र में हैं और जिस तरह का एक्सपोजर आपके सामने है अलग अलग क्षेत्रों का, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट सोच लेंगे, अपवादों को छोड़ करके, है ना। तो बेहतर है कि जब भी हम इस तरह के पॉइंट्स पढ़ते हैं उन्हें नोट कर लें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस में जो एडमिशन जिन स्टूडेंट ने लिया है उनका नाम है मनीष कुमार। मनीष, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं शुभम, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, सोनल सरतबे और मनीषा सिंह लखनऊ से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे फिर एक दिन बाद मुलाकात होगी, इसलिए इजाज़त चाहूँगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।